अगले दिन कशिश ने रजनी के साथ मिलकर खाना बनाया, सबके साथ साथ ईशान को भी खाना खिलाया। फिर सबके जाने के बाद घर के कामों में लग गई। दोपहर में लंच करने के बाद शुभिका और शुभ्रा को पढ़ाने बैठ गई। आगे का दिन भी ठीक उसी तरह बीता। यूं ही दिन गुजरने लगे। कशिश ने एक अच्छी बहू की तरह पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। घर के सब काम करती थी, सबकी जरूरत का ध्यान रखती थी। शुभिका और शुभ्रा को पढ़ाने के साथ उनके साथ ढेर सारी मस्ती भी करती थी, ईशान का भी ध्यान रखती थी। रामविलास जी और कौशल्या जी का व्यवहार अभी कशिश के प्रति पहले जैसा ही था, जबकि सुजीत जी उसके प्रति झुकने लगे थे और महिमा जी से भी अब उसकी ठीक से बात होने लगी थी। काम में उसकी मदद भी करवा देती थी। वो कुछ गलती करती तो कभी प्यार से तो कभी हल्की फटकार से उसे समझाती थी। जिस घर को ईशान की मम्मी ने जाते जाते टुकड़ों में बांट दिया था, कशिश बिना किसी अलगाव की वजह जाने उस परिवार को एकजुट करने की कोशिशों में लगी थी, जो सबको नजर आती थी। पर सालों की दूरी एक आध महीने में कम करना या खत्म करना कहाँ मुमकिन था। फिर भी उसकी कोशिशें जारी थी। रजनी से तो उसकी पहले से खूब पटती थी। शुभ्रा और शुभिका से भी उसकी दोस्ती हो गई थी। शिखा भी उससे मिलने आती थी। दो चार बार रजनी कशिश को अभिषेक के घर सबसे मिलवाने भी ले गई थी। वहां तो सब कशिश को बहुत चाहने लगे थे। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि कम वक्त में सबको अपना बना लेती थी। कशिश वहां से अपना टेडी को ले आई थी, पर अभी भी वो रोज रात को ईशान को ही अपनी बातों से परेशान करती थी। उसे सारे दिन की बात बताती थी, पर उस दिन के बाद उससे कुछ पूछती नहीं थी। उनकी शादी को 2 महीने बीत गए थे। नवंबर का महीना शुरू हो चुका था। इन 2 महीनों में ईशान उसे कहीं बाहर नहीं ले गया था। रजनी ही ले गई थी, वो भी अभिषेक के घर। कशिश सारा दिन घर में रहती थी, फिर भी खुश रहती थी। अब उसने सूट पहनना शुरू कर दिया था। अनजाने में कशिश ने खुद को इस घर के माहौल में बहुत अच्छे से ढाल लिया था और वैसी ही जिंदगी जीने लगी थी जैसी उसकी माँ सालों से जीती आ रही थी, जिसके कारण शादी से भागती थी। पर दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। वो भले अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकती थी, पर घर के अंदर उस पर ज्यादा पाबंदी नहीं लगाई गई थी। वो 4 दीवारियों में रहकर भी खुद को आजाद महसूस करती थी। ईशान और उसका रिश्ता ऐसा था ही नहीं कि वो उसके करीब आए। इस तरफ से भी कशिश सुकून में थी, क्योंकि ईशान उसके और अपने दरमियान एक उचित दूरी बनाकर रखता था। इन 2 महीनों में 1-2 बार उसने जानकी जी से भी बात की थी, वो भी तब जब उन्होंने उसे फोन किया था, वरना कशिश उन्हें फोन नहीं करती थी, जिसकी वजह भी वही थी। जानकी जी ने ही उसे फोन करने से मना किया था। कशिश यहाँ बेहद खुश थी। आज दोपहर का काम खत्म करके वो कमरे में चली आई, क्योंकि शुभिका और शुभ्रा अपने दोस्त से मिलने गई थी और कौशल्या जी महिमा जी अपने कमरे में सोने चली गई थी। कशिश ने अपने फोन में गाना बजा लिया और बालकनी में खड़ी होकर आसपास कुछ देर यहाँ वहाँ निगाहें घुमाने के बाद उसकी नज़र घाट की तरफ चली गई। दोपहर का वक्त था, सूरज सर पर चढ़ा हुआ था, फिर भी घाट पर कुछ आवाजाही थी। सूरज की सुनहरी किरणें गंगा मैया की धाराओं को सुनहरे रंग से सराबोर किए हुए थीं और दूर से गंगा नदी सोने से दमकती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो कोई नई नवेली दुल्हन सोने के आभूषणों से सजी घूम रही हो। आकाश में चमकते सूरज का प्रतिबिंब गंगा की धाराओं पर बन और बिगड़ रहा था। कशिश के लबों पर अनायास ही मुस्कान फैल गई। गंगा मैया, आपको मालूम है मिश्र जी को बड़ा प्यार है आपसे। उनकी सुबह भी आपके दर्शन से होती है और रात को घंटों यहाँ खड़े होकर आपको खामोशी से तकते रहते हैं, जैसे अपनी प्रेमिका को निहार रहे हों। उनकी तरह मैंने भी आपको दूर से ही देखा है। शादी में मंदिर आई थी पर घाट पर नहीं आ सकी, पर जल्दी ही आऊंगी आपसे मिलने और देखना मैं आपसे दोस्ती कर लूंगी। मिश्र जी मुझे तो कुछ बताते नहीं, पर उन्हें आपको तकते देखती हूँ तो लगता है जैसे मौन भाषा में बहुत सी बातें करते हैं आपसे। जब हमारी दोस्ती हो जाएगी तो आप मुझे उनके सारे राज बता देना, फिर हम दोनों मिलकर उनकी सारी परेशानी खत्म कर देंगे। उसके बाद वो हमेशा मुंह सड़ाकर चलता फिरता आग का धधकता गोला बनकर नहीं घुमा करेंगे। वो भी हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, बोलेंगे, यूं चुप चुप नहीं रहा करेंगे। आप मदद करेंगी ना मेरी? कशिश इतनी दूर से गंगा मैया से ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी पुरानी प्रिय सखी हो और उसके बगल में ही बैठी हो। उसके सवाल पर गंगा नदी की लहरें हिलोरे मारने लगी, मानो कह रही हों कि वो उसका साथ जरूर देगी। उनका जवाब समझते हुए कशिश खुद में ही खिलखिला उठी। कुछ देर वहीं गंगा मैया से बातें करती रही, फिर अनायास ही उसकी नजर नीचे गली में खेलते बच्चों पर चली गई। घर के मर्द काम पर गए थे और औरतें दोपहर था तो घर में आराम कर रही थीं और बच्चे गली में अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन थे। कशिश कुछ पल लबों पर मुस्कान सजाए अपने घर के सामने बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देखती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसकी आंखें खुशी व उत्सुकता से चमक उठी। वो झट से कमरे से बाहर निकल गई। घर में इस वक्त गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर कशिश के दबे पांव घर से बाहर चली आई। वो घर से निकलकर बच्चों के पास पहुंच गई और उन्हें देखकर मुस्कुराकर बोली, हेलो बच्चा पार्टी, एक अनजान आवाज सुनकर सब बच्चे खेलना छोड़कर मुड़कर उसको देखने लगे। कशिश को शायद वे पहली बार देख रहे थे, इसलिए वे बच्चे कशिश को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखने लगे मानो दूसरी दुनिया से कोई एलियन आ गया हो या चिड़ियाघर में कोई नया जानवर आ गया हो। कशिश ने बच्चों को यूं अनजान नजरों से खुद को देखता पाया तो अपना हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, हेलो, मैं कशिश इस घर में रहती हूँ। कशिश ने मिश्रा निवास की तरफ इशारा किया, फिर उम्मीद भरी आंखों से उन्हें देखते हुए बोली, क्या मैं भी आप सबके साथ खेल सकती हूँ? कशिश का सवाल सुनकर वे छोटे छोटे बच्चे आंखें बड़ी बड़ी करके कशिश को ऊपर से नीचे तक हैरानगी से देखने लगे। उनमें से एक 5 से 7 साल की बच्ची ने तो तुरंत ही आंखें बड़ी बड़ी करके कशिश को देखते हुए कहा, आप तो इतनी बड़ी हैं, आप हमारे साथ क्यों खेलेंगी? बच्चे खेलते हैं, बड़े नहीं। क्यों बड़ों का खेलना मना है? कशिश ने मुस्कुराकर सवाल किया, जिसे सुनकर बच्चों ने मुंह फुलाते हुए तुरंत ही अपना सिर जोर जोर से हां में हिला दिया। तो कशिश ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कहा, मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं खेल सकती? आपको पता है मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है, क्या आप सब मुझसे दोस्ती करके मुझे अपने साथ खेलने नहीं देंगे? कशिश उदास चेहरा बनाकर उन्हें देखने लगी। वे बेचारे छोटे छोटे मासूम से बच्चे उसका उदास चेहरा देखकर सोच में पड़ गए। कशिश को बात बनती नजर आई और उसने तुरंत ही अपना अगला दांव फेंका। उसने अपना निचला होंठ बाहर निकाला और मुंह बिचकाते हुए अपनी तितली जैसी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए उन्हें बड़ी उम्मीद से देखने लगी। उसका दयनीय चेहरा देखकर बेचारे मासूम बच्चे पिघल गए और उन्होंने कुछ पल सोचने के बाद आपस में सलाह मशविरा लेने के बाद सहमति में सिर हिलाकर उसे खेलने की इजाजत दे दी। कशिश खुशी से चहक उठी, उसने सब बच्चों से जान पहचान की। उसके चुलबुल स्वभाव की वजह से बच्चे जल्दी ही उसके साथ घुल मिल गए और सब साथ मिलकर खेलने लगे। कशिश बाहर आकर खेलने में लगी, बच्चों से दोस्ती भी कर ली, पर उसका घर से बाहर आना और मिश्रा परिवार की बहू होकर यूं गली में बच्चों के साथ खेलना उसके लिए कौन सी नई मुसीबत लेकर आने वाला है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। पढ़ते रहें अनोखी कहानी इश्क मुबारक।